यमुना तीरा बन जाए जय राजा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Paramahamsa Parivrajakacharya Astotara Shatis Divine Grace Avai Charanarvam Bhaktivedan Swami Shri Prabhupada Ki Jaya Anant Koti Vaishnav Vrind Ki Jaya Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jaya Premsa Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrind Ki Jaya Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shyam Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki Jaya Shri Vrindavan Dham Ki Jaya Navadip Dham Ki Jaya Jagannath Puri Ki Jaya Gangamai Ki Jaya Jamunamai Ki Jaya Bhakti Devi Ki Jaya Tulsi Devi Ki Jaya Kaliyuga Pavan Harinam Sankirtan Ki Jaya Gaur Premanande, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलन् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे। कृष्ण हमेशा उनके भक्तों के द्वारा संबंधित रहते हैं। तो महाभारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, बहुत विवादास्पद प्रसंग है। इसके बारे में हर एक व्यक्ति जो भक्त बनता है ये प्रश्न करती है कि धर्मराज युधिष्ठिर महाराज वो धर्मराज होने पर भी जुआ क्यों खेला, और केवल जुआ खेले नहीं, जिस प्रकार से जुआ खेले वो आज तक किसी ने नहीं खेला है और आगे कोई खेलना भी नहीं चाहिए। तो ये जो जुआ है गैम्बलिंग, इसको अलग अलग प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति किसी प्रेम पाश में पड़ गए थे, तो किसी ने महाराज से पूछा, महाराज ये क्या है, राधानंद महाराज से। महाराज ने पूछा, इज गैम्बलिंग इज लाइफ, ही डज नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर ही विल गेट। लेकिन वहां से जुआ चालू हो जाता है। जहां रिस्क कोई लोग लेते हैं, धोखा लेते हैं, और उस धोखा में कोई निश्चितता नहीं है, वो गैम्बलिंग है। इसका जो डेफिनेशन है, जैसे हमें जब तो सुबह करना चाहिए, हम लोग बोलते हैं कभी कभी चलो बाद में कर लेता हूं, वो भी गैम्बलिंग है। क्यों? क्योंकि जैसे साधना भक्ति देरी हो जाती है करने में, अगर करने का अवसर ही नहीं मिला, जब मिला है अगर नहीं करेंगे, जब मिलेगा तब करने के लिए शक्ति नहीं होगी, तो भी गैम्बलिंग है। तो जब ऐसे आध्यात्मिक शास्त्र के अनुसार इतना सूक्ष्म है जुआ खेलना, तो ऐसे स्थूल स्तर के जुए को युधिष्ठिर महाराज ने क्यों खेला, किस प्रकार से? इसके दो दृष्टिकोण है, दोनों भी दृष्टिकोण देखना चाहिए। अगर एक दृष्टिकोण से ही देखेंगे इसको, तो ऐसा लगता है कि अगर आप पढ़ोगे इसको ध्यान पूर्वक, बहुत गुस्सा आता है युधिष्ठिर महाराज के प्रति, अगर हम तत्व ज्ञान को नहीं जानेंगे तो। अरे ऐसा कैसे कर सकते, हाउ कैन यू डू लाइक दिस, तो एक कहानी है, जिस समय हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ में जो राजस्वीय यज्ञ हो गया और युधिष्ठिर महाराज उनका वर्चस्व हो गया कि वो सम्राट हो गए, चक्राधिप चक्रेश्वर हो गए, चक्रवर्ती हो गए, और चक्रवर्ती होने के बाद जितने भी राजा लोग आए थे वो जाने लगे युधिष्ठिर महाराज से विदा लेकर। और जैसे ये जो सदाचार है, संस्कृति है, जहां वो लोग जाते थे बाहर तक जाकर पांडवगण उनको विदा कर रहे थे। द्रुपद के साथ अर्जुन चले गए, धृतराष्ट्र के साथ भीम चले गए, द्रोणाचार्य के साथ सहदेव चले गए, लेकिन शकुनि और दुर्योधन ने कहा हमको यहां रहना है और थोड़े दिन के लिए, तो रह गए। और कृष्ण भी युधिष्ठिर महाराज को कहने लगे अब हमें द्वारका वापस जाना है, हमें विदा दे दो। तब युधिष्ठिर महाराज, भागवत में प्रभुपाद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने रोक लिया कृष्ण को, आपको नहीं जाना चाहिए, और कृष्ण उनकी इच्छा से रुक भी गए। भक्तों की इच्छा को टाल नहीं सकते। तो यहां जब कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हमें जाना है, तो युधिष्ठिर महाराज कहते मैं कैसे मेरे वाणी से बोल सकता कि अब जा, जो कुछ भी मेरे साथ में हुआ है ये सबके लिए आप ही कारण हो, इसलिए मैं कैसे आपको भेज सकता हूं और आपके बिना मैं कैसे जीवित रह सकता हूं। और कुंती के पास भी आते हैं भगवान, उनसे भी विदा लेते हैं, और भागवत के अनुसार उन्होंने कहा कि थोड़े दिन के लिए रुक जाओ, तो यहां इसकी चर्चा नहीं की गई है। और जब दुर्योधन वहां रुका, वो देख रहा था, उसको वो सारा जो सभा देखनी थी कैसे बना हुआ है ताकि मैं भी बनाऊं। वो सौंदर्य उपासक नहीं था, आर्टिस्ट नहीं था, वो क्या था, वो द्वेषी था। जहां भी कुछ अच्छा देके वो पेट्रोल के समान उसको जलाता था, उसकी द्वेष की अग्नि भड़क जाती थी, और इसलिए भ्रमण कर रहा था उस भवन को। और जब भवन को भ्रमण कर रहा था, जो अंधा होता है द्वेष के कारण वो ठीक से पहचान नहीं सकता, और जहां पैर नहीं रखना चाहिए वहां पैर रख दिया और नीचे गिर गया पानी के अंदर। उसके पहले क्या लगा उसको, वो एक तालाब है, वो तालाब नहीं था, स्पर्श जो ऐसा मणि था, स्पर्श मणि से बनाया हुआ फ्लोरिंग था, इसलिए अपनी धोती ऊपर करके वो उधर पैर रखा, लेकिन समझ में आया पानी नहीं है, जमीन है। तो अगले जगह में वो जब गया उसको लगा ये भी ऐसा ही है, तो धोती ऊपर करने के लिए भूल गया, अंदर गिर गया। तो पांडव ने जाकर उसके लिए कपड़े लेकर आए, और यहां जोर जोर से खास करके भीम हंसने लगे, इतना ही लिखा है महाभारत में। द्रौपदी और कृष्ण हंसना दुर्योधन खुद धृतराष्ट्र को कहता है, लेकिन यहां व्यासदेव जी ने लिखते श्लोक में। तो जब वो गिरा, बहुत गुस्सा आ गया, कपड़ा बदला और एक दरवाजे से बाहर जा रहा था, उसको लगा वो दरवाजा नहीं है। तो जैसे उधर गया उसका जो सिर है जोर से, जैसे एक बार हम लोग जलगांव में गए थे पुस्तक वितरण करने के लिए, जो उनका जो दरवाजा था ग्लास का बना हुआ था एकदम साफ, तो एक हमारे डिवोटी जोर से आकर उसको टकराए, पूरा दीवार वो जो दरवाजा है ग्लास का बना हुआ नीचे आ गया, उनका सिर भी फूट गया। तो वैसे ही उसने जोर से टकराया, उसका सिर फूट गया। तो भीम ने कहा ये धृतराष्ट्र पुत्र, तो इसका दुर्योधन समझ गए, उन्होंने कमेंट्री की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो समझ गए मुझे अंधा का पुत्र अंधा बोलना चाहता है। तो बहुत गुस्सा आ गया, देखो इतना सारा उससे देखने को मिल रहा है लेकिन फिर भी उसमें सुख नहीं है, तो उसके कारण आगे चला गया। उसको लाइक एक दरवाजा जोर से धक्का मारा, वो दरवाजा नहीं था, ऐसा खाली था, उसके कारण वो जाकर फिर से गिर गया। तो ऐसी उसकी हालत हो रही थी, तो समझ सकते हो कि देश की अग्नि भड़क रही थी। वहां से निकला हो शकुनि के साथ, और वो कहता है कि मुझे प्राणों को छोड़ देना चाहिए, मैं कैसे जीवित रह सकता हूं कि जब दूसरों का धन देखकर, खासकर मेरे शत्रुओं का धन देखकर अभी भी जीवित हूं मैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। जैसे भक्त लोग कहते हैं ना कि कृष्ण प्रेम बिना मैं अभी भी जीवित हूं, वैसे दुर्योधन कहता है कि ये आश्चर्य की बात है कि मेरे शत्रुओं का धन संपत्ति देखकर भी मैं जीवित कैसे हूं। इसलिए मुझे मेरे प्राणों को छोड़ना है, प्राण त्याग करना है, मैं जीवित नहीं रह सकता। तब हमारे शकुनी उनको कहते नहीं, मरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपको ऐसा एक उपाय बताएंगे जिस उपाय से आप इनके धन को बिना युद्ध से जीत सकते हो। मैं पर्वतीय राजा होने के कारण मैं वहां जो द्यूत क्रीड़ा है उसके सारे अलग अलग जो टेक्निक्स है उसको बहुत अच्छा से जानता हूं, और जो भी मेरे साथ द्यूत खेलेगा वो निश्चित रूप से हार जाएगा। आप अपने पिता को कह देना कि पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए बुला लो, मैं उनको परास्त कर दूंगा। ऐसा करके वो चले जाते हैं। और इसके पहले क्या हो गया, व्यासदेव जी युधिष्ठिर महाराज के पास आए और युधिष्ठिर महाराज से, युधिष्ठिर महाराज ने उनके चरण पकड़कर उनकी सेवा की। और जब व्यासदेव जी निकल रहे थे तब उन्होंने प्रश्न पूछा व्यासदेव से, जब शिशुपाल की हत्या हो गई उस हत्या के साथ नारद मुनि ने कहा था कि देख युधिष्ठिर, तीन प्रकार के अपशकुन में देख रहा हूं, स्वर्ग में, आकाश में और भूमि में। क्योंकि जब यज्ञ चल रहा हो, यज्ञ भूमि में किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। शिशुपाल की हत्या हो गई, कृष्ण ने इस प्रकार से उसकी हत्या की, एक बूंद खून वहां उस यज्ञशाला में नहीं पड़ा। तो फिर भी हत्या हो गई थी, इसलिए नारद मुनि ने कहा था ये तीन लोकों में, ऊपर आकाश में और जमीन पर हम देख रहे हैं कि अपशकुन है, ये उत्पात का चिन्ह है, उत्पात होगा। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने पूछा प्रश्न, किस प्रकार का उत्पात होगा, कब तक होगा, क्या उत्पात समाप्त हो गए, यज्ञ तो हो गया, भगवान कृष्ण की हमने पूजा भी कर ली है। तो व्यासदेव ने कहा जब कुछ उत्पात होता है उसका प्रभाव 13 साल के लिए होता है, 1 साल के नहीं 13 साल के लिए होगा। और ये उत्पाद क्या है युधिष्ठिर, ये उत्पाद यही है कि आपको आपको एक इंस्ट्रूमेंट बनाकर, उपकरण बनाकर आप इसके मूल कारण होगे। व्यासदेव जी बोलते हैं आप मूल कारण होगे और आप मूल कारण होते हुए सारे क्षत्रिय समाज का नाश होगा। इसमें दो और उपकरण होंगे, वो है दुर्योधन का द्वेष और अर्जुन और भीम का साहस। सारा जो क्षत्रिय समाज 13 साल के अंदर सब नाश हो जाएगा। ये सुनते युधिष्ठिर महाराज के मन में बड़ी चिंता हो गई। व्यासदेव जी इतना कह के चले गए। युधिष्ठिर महाराज ने आकर पांडवों को कहा कि अगर मेरे कारण सब लोग मरेंगे, इससे अच्छा मैं मेरे प्राणों को छोड़ दूंगा, कौन जीवित रहेगा 13 साल तक ये देखने के लिए, और क्यों मैं क्यों कारण बनना चाहिए। देखो युधिष्ठिर महाराज, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जहां समाज के लिए जीवन है तब अपने जीवन के बारे में कुछ लक्ष्य नहीं रहता। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अगर मैं इसका कारण बनूंगा तो मुझे क्या करना है, मेरे प्राणों को छोड़ दूंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा, उसको देख नहीं पाऊंगा, मरना ही अच्छा है। तो अर्जुन ने कहा ये क्या आप मुंह में जा रहे हो, ये ठीक बात नहीं है प्राणों को छोड़ देना। तो ठीक है, अगर प्राणों को नहीं छोड़ूंगा तो मैं एक व्रत लूंगा। ये पहला युवा है, पहला द्यूत है, उन्होंने व्रत लिया। उस समय शकुनी और दुर्योधन वहां थे, और किस प्रकार से व्रत लिया, तर्पण के साथ। जब व्रत लेते हैं हाथ में पानी लेकर सारे जितने भी आपके सामने देवतागण दिखाई देते हैं, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, सूर्य, चंद्र, आकाश, वायु, अग्नि,
क्योंकि ये सब भगवान के प्रतिनिधित्व करते हैं और इनको हम देख सकते हैं। इनको लेकर साक्षी लेने से, इनके सामने व्रत लेने से क्या हो जाता है, एक साक्षी बन जाता है, प्रभाव रहता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने तर्पण लेकर सबके सामने जोर से घोषित कर दिया, क्या घोषित कर दिया कि मैं व्रत लेता हूं कि जो भी मेरे वरिष्ठ है, जो भी मुझे कहेंगे उसको मैं करूंगा। ये हो गया जुआ, ऐसा व्रत नहीं लेना चाहिए। हम चर्चा कर रहे थे क्योंकि जब व्रत भी लेना हो हमारे भक्ति के लिए, शास्त्र में कहा गया अगर मुझे कुछ ज्यादा जप करना है, कुछ ज्यादा पूजा करनी है, ज्यादा भागवत पढ़ना है, तीर्थ के लिए जाना है, एक गुप्त व्रत है, लेकिन फिर भी इस व्रत को धारण करने के लिए हमसे बड़े कोई वरिष्ठ वैष्णव से पूछकर उनसे अनुमति लेकर इसका व्रत पालन करना चाहिए। अगर वो अनुमति नहीं देंगे, उनका आशीर्वाद नहीं रहेगा, तो व्रत धारण से कोई लाभ नहीं होता। तो ऐसे सबके सामने जोर से व्रत लेना कि जो भी मेरे लोग मुझे कहेंगे वरिष्ठ लोग, उनका मैं पालन करूंगा। यही सबसे बड़ा गैम्बलिंग मैच था, सबसे बड़ा द्यूत था। क्यों? उनके वरिष्ठ कौन थे? युधिष्ठिर महाराज के वरिष्ठ कौन थे? धृतराष्ट्र थे। तो धृतराष्ट्र वरिष्ठ होने के कारण ऐसे वरिष्ठों का, देखो हम लोग मनुसंहिता की बात कर रहे थे तो वहां भी लिखा है, ऐसे एक विशिष्ट सूचना दी गई है, अगर कोई वरिष्ठ है अपने पुत्र या पुत्री के प्रति जो उनको करना है वो नहीं करेंगे, तो उनको क्या करना चाहिए, स्वयं उसको लागू कर लेना चाहिए बिना पिता के अनुमति से। क्यों? क्योंकि उससे उनका धर्म का जो मार्ग है वो भ्रष्ट नहीं होगा। तो यहां युधिष्ठिर महाराज ने व्रत धारण कर लिया और उसके बाद शकुनी और दुर्योधन चले गए और सीधे जाकर किसको मिलते हो? धृतराष्ट्र को। और धृतराष्ट्र को मिलने पहले शकुनी जाकर कहते, देखा आपने आपके पुत्र को क्या हो गया उसकी हालत, वो फीका पड़ गया है, पीला पड़ गया, चतुर्मास कर रहा है और उसके उसके शरीर में कांति नहीं है, कांतिहीन हो गया है, इतनी चिंता हो गई उसको, और आप बुलाकर बात करो उससे। धृतराष्ट्र बुला लेते दुर्योधन को, पूछते बेटा क्या समस्या है, तेरे लिए अच्छे अच्छे बेड लेकर आए हम लोग सोने के लिए, तू उस पे सोता क्यों नहीं है, उस पे सो जा। टिपिकल मटीरियलिस्टिक फादर, ऐसा बाप है जो भौतिक सुखों के द्वारा उसको लग रहा था कि मेरा पुत्र सुखी हो जाएगा, तेरे लिए इतने अच्छे शैया लेकर आए हैं उस पे तू सोता है, और दूसरा जितने युवतियां चाहिए तेरे लिए, मनोरमा युवतियां भोग करने के लिए वो मिल रहे। देखो पिता अपने बेटे को कह रहा है 5,000 साल पहले, जैसे अगर पिता अपने पुत्र को अपना ये जो फूका हुआ धूम्रपान सिगरेट लगाने के लिए देगा। जैसे हम लोग एक बार ट्रेन से जा रहे थे बेंगलुरु, एक विद्यार्थी हमारे सामने बैठकर धूम्रपान कर रहा था, 11वीं खाता हो, तो एक डिवोटी ने कहा अगर आप फूकते रहोगे ना हमको उल्टी होती है और आपके मुंह पर ही आ जाएगा, तो अच्छा है बाहर जाकर फूको। फिर वो चला गया, फिर उसको आने के बाद उसने पूछा डिवोटी ने, क्यों आप क्यों सिगरेट फूकते हो? बोला आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, मैं मेरे पिताजी के पॉकेट से चोरी करके पीता था, फिर एक दिन पकड़ा गया और पिताजी बहुत गुस्से हो गए, चोरी नहीं करना चाहिए, मांग के ले ले, मैं तेरे को दूंगा, प्रामाणिक रहो। तो उस दिन से मैं और मैं पिताजी दोनों मिलकर पिताजी लगाते और उनका महा जो है मैं लगा लेता हूं, ऐसे हम लोग फूकते। तो धृतराष्ट्र अपने पुत्र को कह रहा है इतने सारे मनोरमा है तेरे लिए भोग करने के लिए। अगर आप पढ़ोगे महाभारत ने ऐसे लिखा है कि धृतराष्ट्र के पुत्र 100 के ऊपर थे। अगर संख्या देखोगे 100 पुत्रों का नाम है, लेकिन जब भीम उनको मार रहे थे उनकी संख्या 100 के ऊपर चली जाती है, तो सोच सकते हो धृतराष्ट्र क्या कर रहे थे। जिसको काम नहीं है, बहुत शक्ति है, करने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे वो ही भोग करेंगे दुर्भाग्यवश। तो इसलिए अपने बच्चों को कह रहे कि तेरे पास इतने सारे युवतियां है तो क्यों नहीं भोग करता, और तीसरा घूमने के लिए इतने सारे जगह है, लोनावाला जा सकते हो, खंडाला जा सकते हो, महाबलेश्वर जा सकते हो, यहां सब जा सकते हो, फिर भी तेरे मन में दुख क्यों है। तो दुर्योधन अपने पिताजी को कहता है कि मैं कैसे सुखी हो सकता हूं। जो हम लोग चर्चा कर रहे थे पहले दिन, वो कहता है जहां समाधान है वहां धन संपत्ति नहीं है। इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर सैटिस्फाइड, यू कैन नॉट मेक मनी। जहां समाधान हो वहां हम संपत्ति नहीं कर सकते। इसलिए मैं कैसे समाधानी हो सकता हूं, मुझे तो धन प्राप्त करना है, मुझे तो ऐश्वर्य प्राप्त करना है, लेकिन जब मैं पांडवों के ऐश्वर्यों को देखता हूं, उनके ऐश्वर्यों को देखकर, पिताजी मैं आपको क्या बताऊं, दुर्योधन देखो हर चीज जो दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज के लिए वहां आया था भेंट के रूप में, कितना उसका कितनी उसकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, सब कुछ याद रखा था, जो कुछ भी आया, जिस देश से आया, किसने दिया, क्या क्या दिया था, क्योंकि उसको सेवा कृष्ण ने दिया था, इसको ही सेवा दे दो। भगवान कृष्ण भी क्या करते हैं, जिनके अंदर द्वेष है, क्योंकि वो भी कुरुवंशीय था, युधिष्ठिर महाराज कुरुवंशीय थे, इसलिए उसको सेवा लगाया था। जो भी लोग भेंट लेकर आएंगे उसको दुर्योधन लिख लेगा और रख देगा अंदर उसके ट्रेजरी में, नहीं पांडवों के ट्रेजरी में। तो इसलिए सब 10-15 पेज है इसका वर्णन महाभारत में, क्या क्या लेकर आए थे वो लोग, वो सब दुर्योधन को याद था। हो सकता वो गिफ्ट सब पांडवों के पास था, नोटबुक उसके पास था, वो लिख के वो देख के बोल रहा था। उसने कहा आप जानते हो क्या, युधिष्ठिर महाराज के दरबार में स्वयं द्रौपदी खड़ी रहती है, जब तक सबका भोजन नहीं होता, इधर तक कि जो बछड़े हैं जब तक वो भी नहीं खाएंगे तब तक वो खाती नहीं है, उनको खाने के बाद ही वो खाती है, उनको खिलाने के बाद ही वो खाती है। और ब्राह्मणों को मैंने ऐसे एक अद्भुत चीज देखी, जहां ब्राह्मण लोग आते हैं भोजन करने के लिए, उनको परोसा जाता है, लोग पीते खाते हैं, और जब 1,00,000 ब्राह्मण खाने के बाद शंख बज जाता है, ऐसे बार बार शंख बज रहा था। देखो कितने लोगों को खिलाते हैं, यहां के घोड़े, इधर के गाय, यहां के रत्न, उधर का शंख। बोला एक कोई कश्मीर का राजा शंख लेकर आया, वो इतना दिव्य शंख था, वो शंख अपने आप बजता था ऑटोमेटिक, यानी कि उस शंख के बारे में उसकी इतनी आसक्ति थी, देखो वो पूरा याद रखता इसके साथ भी। तो कहता मैं कैसे सुखी रह सकता हूं, ये संभव नहीं है, मैं मर जाऊंगा। धृतराष्ट्र बोले तुझे मरना नहीं, मैं मर जाऊंगा, तू मरेगा तो, इतनी आसक्ति थी। फिर शकुन ने कह दिया कि अगर आपको दुर्योधन को संतुष्ट बनाना है तो अब क्या करना होगा कि पांडवों का जो धन है उसको हरण करना होगा, उसको तो हम युद्ध से नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि पांडव के पास जो शक्ति है वो महान है, इसको हम युद्ध से नहीं जीत पाएंगे, लेकिन जुआ खेलकर निश्चित रूप से मैं हरा सकता हूं। और यहां शकुनी 2-3 बार कहता है कि युधिष्ठिर उसे जुआ बहुत अच्छा लगता है, परंतु खेलना नहीं आता, इसलिए वो बच गए थे। जुआ बहुत अच्छा लगता है परंतु खेलना नहीं आता, इसलिए शास्त्र में कहा है कि राजाओं का सबसे महान उनके लिए प्रलोभन क्या है, प्रलोभन यही है कि 4 नियम जो बताए जाते हैं, ये चारों प्रलोभन राजाओं के लिए भर भर के रहता है, जुआ खेलना, मदिरा पीना, ग्राम्य सुख करना और जानवरों को मारना, शिकार करना, ये उनके लिए बहुत बड़ा प्रलोभन है। इसलिए मनु महाराज मनु संहिता में कहते हैं कि इन 4 जो पाप है इससे राजाओं को दूर रहना चाहिए, क्योंकि सुविधाएं बहुत होने के कारण, रजोगुण बहुत होने के कारण, जहां रजोगुण है वहां साहस है, जहां रजोगुण है वहां एडवेंचर है, जहां सत्वगुण है वहां एडवेंचर नहीं है, वहां क्या है, समाधान है। आराम से बैठो, शास्त्र पढ़ो, और जहां तमोगुण है वहां सो जाओ। तो जहां रजोगुण है, राजा लोग रजोगुण में होने के कारण ये चार कार्य करने में साहस लेते हैं। मदिरा पीना, देखता हूं तू कितना पिक पीता है, मैं कितना पिक पहनता हूं, इसमें कंपटीशन, कितने जानवरों को मारोगे, कितने स्त्रियों के साथ भोग करोगे। इसलिए जुआ, वो कहते कि युधिष्ठिर महाराज बहुत इसको पसंद करते हैं लेकिन खेलना नहीं आता। खेलना क्यों नहीं आता? क्योंकि सुसंस्कृत थे, उनके माता ने, उनके परिवार के लोगों ने ऐसा खेल उसको खिलाया नहीं। इसे घर में कभी कभी लोग कार्ड्स खेलते हैं, लेकिन जहां सुसंस्कृत लोग हैं वहां कार्ड्स बना है, क्योंकि वो क्या करेगा, कार्ड्स जहां आ गया तहां नोट भी आ जाता है, लोग उसको जुआ में लगाते हैं, हार जाते हैं। जैसे एक डिवोटी कह रहे थे, उनके मित्र थे पहले, वो जब वो डिवोटी नहीं थे तब वो भी जुआ खेलने के लिए जाते थे बॉम्बे में। सोचो, वे एयरपोर्ट, घर से एयरपोर्ट जा रहे थे लंदन जाने के लिए, और लंदन जाते जाते वो एक होटल में गया जुआ खेलने के लिए, और आधा घंटे में 1.5 करोड़ रुपए गमा लिया। इसलिए प्रभु जी, आई सॉ राइट इन फ्रंट माई आईज, मैं मेरे आंखों के सामने देखा कि 1.5 करोड़ रुपए। सोचो, 1.5 करोड़ अगर निगड़ी मंदिर या पुणे मंदिर को मिल जाएगा, श्री गुरुशर प्रभु इधर आए हुए, तो भगवान के लिए बहुत सुंदर ऑल्टर बनेगा, एक पूरा हॉल बन जाएगा, वहां हम लोग 100 साल तक कीर्तन कर सकते हैं। ये आधा घंटे में 1.5 करोड़ रुपए गमा दिया। और एक व्यक्ति के बारे में राधानंद महाराज कह रहे थे, वो लास वेगस गए थे केवल देखने के लिए, देख के आता हूं क्या है, कैसा है, जिज्ञासा। ये जिज्ञासा बहुत खतरनाक है। हो गए और बिजनेस के लिए गए थे, वो ये 25-30 साल पहले की बात है, उस समय 60 लाख रुपए लेकर गए थे, और वो गए देखने के लिए। जब बाहर निकले उनके पास टैक्सी के लिए पैसा नहीं था वापस अपने होटल में आने के लिए, क्योंकि वो निष्णात होते हैं कि आपका सब सारा लूटने के लिए। 60 लाख रुपए इज विद इन नो टाइम ही लॉस्ट। वहां से अपने घर में फोन किया तो घर वालों ने वायर किया पैसा उसको। ये जो क्रिकेट खेलने में जो मैच को अरेंज करते हैं उनमें, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट किसमें होता है? इंटरेस्ट इसमें होता है कि लोग जब ये जो घुमाने लगते हैं, जब उनको रंजन होने लगता है इसमें कौन जीतेगा, उसके लिए गैम्बलिंग, हर बॉल के ऊपर गैम्बलिंग करते लोग। ये तो क्या, अमेरिका के एक हॉस्पिटल में नर्स लोग गैम्बलिंग कर रहे थे किसके लिए, ये पेशेंट मरेगा या जीवित रहेगा, मरेगा या जीवित रहेगा, ऐसा कंटिन्यूसली चलता था उनका। फिर एक जो नर्स थी वो अप्रामाणिक बन गई, यानी कि गैम्बलिंग में भी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता है। उसने लगाया था कि ये मरेगा, फिर वो मर ही नहीं रहा था, तो उसने क्या कर दिया, जब वो नर्स कहां बाहर चली गई थी उसको 5 मिनट के लिए पाइप निकाल दिया, ऑक्सीजन का पाइप, ताकि वो मरना चाहिए, और आने के पहले लगाई तब तक वो उसका जान छूट गया। लेकिन ये वो जब कर रही थी ऐसा, वो किसी से पकड़ी गई, देनो कहने की, देखो यानी कि जान कब जाएगा, अब जाएगा बाद में जाएगा, इसके लिए भी गैम्बलिंग। तो लोग किस प्रकार से जुआ खेलते हैं, और जुआ इसलिए प्रभुपाद भागवत के तात्पर्य में लिखते हैं, ये जो चार पाप है जीव का, बद्ध जीव का, ये स्वाभाविक लक्षण है बद्ध जीव का। अगर हम पैसे से भी नहीं खेलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं कभी कभी, चैलेंज चैलेंज मतलब आ गया जुआ, ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, 6 महीने में मंदिर बना कर दिखाएंगे, वे भी जुआ ही है। लेकिन अगर गुरु की इच्छा है ऐसा करने के लिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। रिस्क लेना ये जीव का स्वभाव है, लेकिन कृष्ण के लिए रिस्क लेना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज भी यहां, जैसे मैंने कहा, दो दृष्टिकोण से इस लीला को देखनी है। एक दृष्टिकोण ये है, हम ये दृष्टिकोण बता रहे कि जुआ क्या है, और यहां हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज कैसे फंसने लगते इसमें। तो विदुर को बुलाया, धृतराष्ट्र ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं जो भी डिसीजन है वो विदुर को पूछ के बिना कुछ नहीं करता, पूछता है लेकिन पालन तो नहीं करता। तो विदुर को बुला लेते, देख विदुर कैसे मेरे पुत्र जुआ की बात कर रहे, अभी उत्सव हो गया है तो राजा लोग जुआ खेलना चाहिए, तो आप क्यों नहीं बुलाते युधिष्ठिर महाराज को? तो उन्होंने कहा, विदुर ने कहा, आप जुआ के लिए क्यों बुलाते हो? ये जुआ क्या करेगा? ये हमारे परिवार में मतभेद कर देगा, झगड़ा का कारण बनेगा, इसे संघर्ष होगा और यहां रुकेगा ना, इसे युद्ध भी हो सकता है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग है ना देखने के लिए, वो लोग खेलेंगे हम लोग उनको मॉनिटर करेंगे, मैं हूं यानी कि इतना बड़ा धर्मात्मा धृतराष्ट्र बैठा है और बाद में भीष्म है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, आप हो, तो ये सब लोग होने के कारण इसमें कोई कुछ होगा नहीं, वो लोग खेलते रहेंगे, जस्ट स्पोर्टिव मैच, इसमें पैसा वैसा कुछ नहीं। तो विदुर चले जाते अपने पांडवों के पास और फिर से दुर्योधन आकर फिर से और संपत्ति जो बोला नहीं था उसके बारे में चर्चा करने लगता है और धृतराष्ट्र अपने लोगों को आज्ञा देते हैं, एक तोरणशिला नामक एक बहुत बड़ा हॉल बनाओ, तुरंत उस हॉल बनाने के लिए तैयारी चलती है। एक क्रोस यानी कि 1 crore square meter ऐसा होता, 1 crore यानी कि जहां अगर कोई सबसे शक्तिशाली आवाज वाला चिल्लाएगा, जोर से अपने मुख को ऊपर करके चिल्लाएगा जोर से, जहां तक वो आवाज जाएगा, जहां से चिल्लाओगे और जहां तक आवाज जाएगा उतना बड़ा हॉल रहेगा वो, यानी कि एक फुटबॉल स्टेडियम से कोई छोटा नहीं, क्योंकि सब सज्जन लोग आने वाले थे ना देखने के लिए वो मैच को। तो वैसा हॉल बनाने के लिए आज्ञा दी, 100 दरवाजे थे उसको और 1000 खंभे थे। और युधिष्ठिर महाराज के पास जाते और युधिष्ठिर महाराज को कहते कि देखो, आपको आपके जो बड़े पिता है धृतराष्ट्र महाशय जुआ खेलने के लिए बुलाए। तो युधिष्ठिर महाराज कहते, जुआ ये तो बहुत खराब है, जुआ खेलना ये झगड़ा का मूल है, यहां कोई आनंद नहीं होगा, इसमें केवल द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मेरे बड़े लोग बुला रहे हैं, ये मेरा व्रत है, निश्चित रूप से मैं जाऊंगा, इसको मैं टाल नहीं सकता। और विदुर जी स्पष्ट शब्दों में कहते, देखो किसके लिए बुला रहे हैं, आपका सारा संपत्ति वो हरण करना चाहते हैं। तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि संपूर्ण जगत दैव का आधीन है, संपूर्ण जगत दैव का आधीन होने के कारण सब कुछ दैव की इच्छा से चलती है चलता है, इसलिए मैं इसको ना नहीं कर सकता, मेरे जो बड़े हैं उनकी बात मुझे माननी ही पड़ेगी। तो तुरंत अपने भाइयों के साथ, अपने सारे संपत्ति के साथ, अपने रथ में बैठकर युधिष्ठिर महाराज आते हैं उधर, और जैसे दरवाजों को देखते हैं, इतना बड़ा दरवाजा रहता है उसको कहते हैं कली द्वार है। ये द्वार क्या है? एक कली द्वार है, काल का द्वार है, यम का द्वार है, यहां कोई प्रवेश करेगा, यहां प्रवेश करने वाला क्या होगा, उसका नाश निश्चित है, वो जानते थे। और जैसे गए वे कहते शकुनी से, क्यों ये हमारा जो धन है ये किनके लिए है? ये ब्राह्मणों के लिए, हमारा धन किसके लिए? संतों के लिए, यज्ञ करने के लिए, विद्यार्थियों को। हां दुर्योधन ने एक भी कहा था, उन्होंने कहा था देखो युधिष्ठिर महाराज के दरबार में, उसके राज्य में हर रोज 88,000 विद्यार्थीगण भोजन लेते हैं, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, फ्री एजुकेशन और फ्री फूड, ऐसा भी उसके लिए उन्होंने बना के रखा हुआ है। तो ये देखकर मेरे मन में इतना द्वेष होता है, ये सब कुछ मुझे हरण करना है। तो कहते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप जानते हो ना कि जुआ खेलना ये कली का लक्षण है, इसे सारा नाश हो जाएगा, ऐसा मत करो। तो शकुनी कहता है ठीक है, आपको अगर नहीं खेलना तो चले जाओ। तो कहते नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे वरिष्ठ ने मुझे कहा है मुझे करना ही होगा, मैं करूंगा, दैव प्रबल है, हम सब दैव के आधीन हैं और हम सब दैव के आधीन होने के कारण ये जुआ होगा। तो जाकर बैठ जाते युधिष्ठिर महाराज और सारे कौरव आकर बैठ जाते हैं और शकुनी कहता है कि मैं दुर्योधन के वती से जुआ खेलूंगा। फिर से युधिष्ठिर महाराज कहते कि ये धोखा है, ये ठीक नहीं है, कौन खेलना चाहिए उसको ही खेलना चाहिए, तुम क्यों खेल रहे हो। बोला नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं, हम कंडीशन करके रखे है, अगर दुर्योधन के वती से मैं हर जाऊंगा वो दुर्योधन हरने के समान है। तो जुआ का खेल चालू हो जाता है। वो जो पासा होता है उसको चार साइड होते और चार साइड में एक दो तीन चार ऐसा लिखा रहता है और शकुनी पासा फेंकेगा और युधिष्ठिर महाराज नंबर बोलेंगे। तो एक आचार्य लिखते हैं कि जब शकुनी फेंकता था युधिष्ठिर महाराज चार तीन चार तीन चार तीन के बदले में एक दोन कभी पूछ नहीं पाए। वो चार बोलते थे एक आता था, तीन बोलते थे दो आता था, चार या तीन चार या तीन चार या तीन उनके मुख से एक या दो निकल नहीं पा रहा था क्योंकि चार और तीन त्रेता और सत्ययुग का प्रतीक है, धर्म चार पैर पर खड़ा हुआ है या कम से कम तीन पैर पर खड़ा हुआ है, सुभद्र है, शक्तिशाली है। तो धर्म के आश्रित होने वाले युधिष्ठिर महाराज वो क्या कर रहे थे, उनके मुख से कली और द्वापर निकल ही नहीं रहा था। कली एक पैर पर खड़ा है और द्वापर दो पैर पर खड़ा है। कली और द्वापर मांगना यानी कि दुर्योधन और शकुनी के साथ मित्रता करने के समान है। क्यों? दुर्योधन कली का प्रतिनिधित्व करता है और शकुनी द्वापर का प्रतिनिधित्व करता है। तो निश्चितता यहां जुआ क्या है, जुआ सत्ययुग को प्रतिनिधित्व नहीं करता, त्रेतायुग को प्रतिनिधित्व नहीं करता, किसको प्रतिनिधित्व करता है, कली और द्वापर। द्वापर यानी कि डुप्लीसिडस बिहेवियर। इसलिए हाल ही में एक देश में सिंगापुर में अब तक वहां कैसिनोज नहीं थे, जुआ के लिए कोई अवसर नहीं था। तो उन्होंने देखा इतना सारा रेवेन्यू चला जा रहा है, इतना सारा पैसा चला जा रहा है, तो उन्होंने बहुत दो बड़े बिल्डिंग बना रखे जुआ के लिए। लेकिन नियम क्या है, हमारे देश के लोग नहीं खेलेंगे, बाहर के जो भी आएंगे वही क्या है, ये यू नो डे लाइट रॉबरी है। इतना बड़ा बिल्डिंग बना के रखा है कि बाहर के लोग आएंगे वही वहां जाएंगे, वही जुआ खेलेंगे, और अगर लोकल लोग हो तो उनका और हर एक व्यक्ति का पास पासपोर्ट होना चाहिए, ये सब नियम ठीक से लागू होगा। किसका पासपोर्ट है, अगर लोकल स्वदेशी है उसको अनुमति नहीं है, वो जाएगा तो उसके लिए फीस कितना है, केवल अंदर जाने के लिए $100, अंदर जाने के लिए $100। और ऐसे बोलकर रखा है जो भी जुआरी है उस देश में अगर वो क्रॉनिक जुआरी है तो सरकार को उनके परिवार के लोग एक फॉर्म भर के रखना चाहिए और उसको टाइप करेंगे उनके कंप्यूटर में, अगर एक क्रॉनिक जुआरी है तो उसको अनुमति नहीं है लोकल, नहीं तो $100 अंदर जाने के लिए और खेलने के लिए अलग पैसा, तो कोई जाता ही नहीं। लेकिन बाहर के लोग बिल्डिंग देखकर जाते हैं अंदर और पूरा पैसा उनका गुम हो जाता है। तो वैसे ही क्योंकि खेल कली और द्वापर का है, रेवेन्यू बनाने के लिए सरकार ऐसे चीजों को बनाती है, देखो क्योंकि उनको सटल प्रिंसिपल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पैसा आ गया ना, कैसे आ रहा है इसके बारे में मत सोचो। कई देशों में वेश्यावृत्ति कंपनी है, उसको कंपनी चलाते हैं, इसको कंपनी चलाया जाता है, तो सोच सकते। तो इसीलिए दुर्योधन और शकुनी इसका प्रतिनिधित्व करते थे और युधिष्ठिर महाराज इसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे, संभव ही नहीं था। इसलिए निश्चित था कि जो त्रेता और सत्ययुग अगर वहां खेलने के लिए जाएंगे जो जानते ही नहीं है, और कली और द्वापर तो इसको मास्टर है, तो निश्चित रूप से युधिष्ठिर महाराज हार जाएंगे और सारे संपत्ति को दांव पर लगाने लगे एक के बाद एक, सब कुछ उनकी संपत्ति पूरा चला गया तो शकुनी ने कहा, अरे आपके पास और भी कुछ है देखो। तो युधिष्ठिर महाराज तो जीवंत लोगों को लगाने लगते हैं, अपने दासों को, अपने दासियों को, अपने घोड़ों को, अपने गायों को, वो भी सब समाप्त हो गया। अब क्या बचा है? उनके पांच भाई बचे हुए। तो उसमें जो दो भाई है नकुल और सहदेव को लगाते पहले और उनका वर्णन करते, देखो कितने महान है लोग, उनको भी हर जाते हैं। तब शकुनी कहता है मैं जानता हूं क्योंकि आपका प्रेम और गौरव भीम और अर्जुन के प्रति है, आप तो उनको नहीं लगाओगे। मैं जानता हूं नहीं लगाओगे। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि शकुनी तू क्यों हमारे में फूट डाल रहा है, क्यों भेद कर रहा है? ये देख मैं अर्जुन को भी लगा रहा हूं। अर्जुन को भी लगा देते, अर्जुन का, अर्जुन की जो महिमा गाते हैं, और अर्जुन को भी डाव पे लगा देते। बोलते कि इसको डाव पे लगाने में मुझे बहुत दुख हो रहा है लेकिन फिर भी मैं लगा रहा हूं। ये है जुआ। और उनको लगाया, उसके बाद भीम को लगाया और उसके बाद अपने आप को लगा दिया। और जब अपने आप को लगाया तब शकुनी ने कहा, धर्म की बात कर रहा है, धर्म में ऐसा कहा है, शास्त्र में ऐसा कहा गया है, जब किसके पास संपत्ति होती है, संपत्ति होने के कारण अगर अपने आप को जुआ में लगा दिया वो बहुत बड़ा पाप है, और दूसरा कुछ पाप ही नहीं जो चल रहा है अब तक। यानी कि वो क्या कह रहा था कि सब बड़ी संपत्ति कौन है? द्रौपदी है, द्रौपदी को लगा। तो बताया जाता है कि आज तक जितने लोगों ने जुआ खेला था, नल और पुष्कर, नल और पुष्कर दोनों भाई थे, निषाद राजा थे, वे कितने दिन तक जुआ खेल रहे थे। उसकी पत्नी बोल रही थी मत खेलो, इससे सारे प्रजागण पीड़ित है, लेकिन दोनों में कली प्रवेश कर लिया था। वो खेलते गए खेलते गए, सब कुछ हार गए नल महाराज अपने ही भाई को। अंत में पुष्कर ने कहा लगा दे तेरे पत्नी को, ये सुनते ही नल महाराज वहां से उठकर चले गए। उन्होंने ऐसा नहीं किया था, नल ने नहीं लगाया था। और युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है, देखो भगवान कैसी लीला करते हैं कि धर्मराज यानी कि धर्म का ऐसा पालन करते हैं, लेकिन ऐसे धर्मराज को बुद्धि मारी गई, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उन्होंने कहा हां द्रौपदी है, और 12 श्लोक में, एक नहीं दो नहीं 12 श्लोक में द्रौपदी के हर एक अंग का वर्णन करते हैं पब्लिक में। स्वयं पति अपने पत्नी के बारे में लोगों के सामने, वो कैसे लोग है, सारे पाषाण हृदय के, राक्षसी वृत्ति के, उनकी जो दृष्टि थी द्रौपदी के प्रति वो सम्मान की दृष्टि नहीं थी, वो भोग के दृष्टि से देख रहे थे। और ऐसे लोगों के सामने आगे बैठने वाले कौन थे? शकुनी, दुशासन, कर्ण, दुर्योधन। ऐसा नहीं कि कर्ण जाकर सूर्य की उपासना कर रहा था, बैठ के जप कर रहा था, ये मुझे देखना नहीं, उधर ही बैठा था। और धृतराष्ट्र शकुनी के निकट बैठा था, हर बार आवाज आता था मेरे बच्चे जीत गए, मेरे बच्चे जीत गए, ऐसा प्रश्न कर रहा था। और इसके बीच में क्या हो गया, विदुर खड़े हो गए बीच में, अभी द्रौपदी नहीं आई थी, पांडव नहीं आए थे, और विदुर खड़े होकर बोलने लगे मैं जो बोल रहा हूं इसको लोग सुनना नहीं चाहेंगे, फिर भी मैं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा धृतराष्ट्र जानते हो ना कि जब एक तेरे गधे का जन्म हुआ था, दुर्योधन को सबके सामने वो भर्त्सना करते, देखो कितना विदुर के अंदर धैर्य था। उन्होंने कहा इसका जब जन्म हुआ था तब मैंने कहा था इसको त्याग दो, इसके कारण सारे कुरु परिवार का नाश हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, ये ऐसा ही है गले में जैसा भेड़ी या बकरा गले में तलवार लगाकर उसको डालता है और जाकर पत्थर को अपना सिर पीटता है, वैसे ही हालत हो रही है। ये समझेगा नहीं, इसको इसको अर्जुन के हवाले कर दो, जैसे कृष्ण ने कंस को मार दिया था, उसके पिता ने कंस को त्याग कर दिया था, कृष्ण ने अपने मामा को मार दिया, वैसे ही यानी कि दुर्योधन के सामने विदुर को शक्ति है बोलने की, लेकिन धृतराष्ट्र क्या सुनेंगे, वो तो सुन रहे थे मेरे पुत्र जीत गए क्या, मेरे पुत्र जीत गए क्या। तब दुर्योधन कहता है कि हे विदुर, तू क्यों बीच में बोलता है? तो हमारे लिए काम कर रहा है लेकिन सेवा करता है दुश्मनों का, ये कौन सा धर्म है? इधर दिखाई दे रहा है कि तू हमारे गोद में बैठकर हमको ही ढस रहा है, तू एक सांप है। तू जानता नहीं है कि जो पालन करने वाले एक ही व्यक्ति है इस जगत में, जो मां के गर्भ में है उसको भी पालन करने वाले एक ही है, और उन्हीं के आदेश से मैं काम कर रहा हूं, मैं विवश हूं। ऐसा श्लोक विदुर को बोल रहा है। देखो कहता है आई एम हेल्पलेस, आई एम ओनली वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ दैट गॉड। यानी कि वो विश्वास रखता था और कह रहा था ये जो कुछ भी हो रहा है किसकी इच्छा से हो रही है? उस विष्णु की इच्छा से हो रही है। तो क्यों ने लोग ऐसे श्लोकों को पढ़कर, एक हमारे डिवोटी है एयरलाइंस में काम करते हैं, उसके मित्र गीता को अच्छा से जानते हैं, जितने श्लोक हम लोग संघर्ष करते बाहर करने के लिए वो 700 श्लोक यहां से भी पढ़ सकते हैं और उल्टा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन श्लोक पढ़ते समय या उसके बाद शराब पीना, जुआ खेलना, बोला ना आई एम जस्ट डूइंग बिकॉज गीता में कहा गया है जीव विवश होकर सब कुछ कर लेता है, गुणों के प्रभाव से, विष्णु के माया के प्रभाव से वो विवश होकर करता है। फिर वो बड़े आत्मविश्वास के साथ जो सिगरेट का जो धुआं है उसको रोल रोल करके छोड़ता है। देखो ये दुर्योधन के सारे चेले, तो दुर्योधन वैसा ही कह रहा था आई एम हेल्पलेस। जो पेट में भी वही जीव को पालन करेगा और जो बाहर आने के बाद भी वही पालन करेगा, उसकी इच्छा से मैं कार्य कर रहा हूं, इसलिए तू बीच में मत आओ। जो अचालो हो गया, धृतराष्ट्र सुनने के लिए तैयार नहीं थे, विदुर ने सारे ब्राह्मणों से कहा मुझे क्षमा कर दो, इसको मैं देख रहा हूं। कई लोग कहते कि विदुर वहां से चले गए उस समय। और जब द्रौपदी को लगाया, 12 श्लोकों में युधिष्ठिर महाराज वर्णन करते उसके सौंदर्य को और उसको लगा देते कि ये है द्रौपदी। और शकुनी ने पासा फेंका और वहां युधिष्ठिर महाराज हार गए। जैसे ही हार गए तब दुर्योधन ने कहा प्रतिकामी को भेज दिया, जाओ वो दासी को लेकर आओ, वो हमारी दासी बन गई। और जब प्रतिकामी जाता है तो द्रौपदी ये प्रश्न करती है कि मुझे स्वयं अपने इच्छा से कुछ नहीं करना है, अगर मेरे पति जुआ में हार गए लेकिन मैं ये प्रश्न करना चाहती हूं पहले कौन हार गया? क्या मेरे पति पहले हार गए और उसके बाद मुझे जुआ पे लगाया? अगर ऐसा है क्या वो ऐसा कर सकते, उनको ऐसा अधिकार है? ये वहां के वरिष्ठों को जाकर पूछो, मेरे से धर्म लोप नहीं होना चाहिए। देखो उस हालत में द्रौपदी किसका आश्रय ले रही है? धर्म का आश्रय ले रही है। जाकर मेरे वरिष्ठों को पूछो, वो जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगी। प्रतिकाम जाता है, वो कहता है कि उसका ऐसा प्रश्न है, बोलो बोलो उसको उधर इधर ही आकर पूछो। वो फिर से जाता है, वो बोलते मैं रजस्वाली हूं, मैं अकेले यहां नहीं आ सकती हूं। तो फिर से प्रतिकामी नीचे आता है तो दुर्योधन उसको डांटता है कि ये जो मेरा सेवक है ना वो डरपोक है, भीम से डर रहा है, दुशासन तू जा। तो बोलने के पहले तैयार था, वो फर्स्ट क्लास सर्वेंट था ना दुर्योधन का, तो रेडी था, वो जाकर द्रौपदी के बाल पे हाथ लगाता है। तो वहां व्यासदेव जी, महाभारत का विशेष, व्यासदेव कभी भाग नहीं लेते लीलाओं में, न्यूट्रल पार्टी के रूप में लीला को बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी भाग लेते हैं लीलाओं में, जब वो कथा करते हैं भागवतम में वो एक्चुअल में उसमें भाग लेकर उस भावनाओं के द्वारा वो विभोर हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है। और इसमें कभी कभी देवताओं को गाली देते, कंस को गाली देते, धिक्कार उन देवताओं को, ऐसा भी वो गुस्सा करते। तो यहां व्यासदेव जी कभी भाग नहीं लेते, लेकिन व्यासदेव जी कहने लगे अरे वो देखो वैसे बाल थे जिस बाल को अवभृत स्नान किया गया था, उसका अभिषेक हो गया था, रानी के रूप में उसको घोषित किया गया था, कृष्ण के द्वारा स्वयं अभिषेक किया गया था, ऐसे द्रौपदी के बाल को ये दुष्ट दुशासन ने क्या किया? उसको स्पर्श किया। केवल स्पर्श नहीं किया बल्कि जोर जोर से उसको खींचने लगा, और खींचकर उसको, जब वो बोल रही थी कि मुझे स्पर्श मत करो मैं रजस्वाली हूं और ये प्रश्न का उत्तर दो, उसको खींचकर लाया। सारे जो स्त्रियां थी उधर की वो इस दृश्य को देख नहीं पाई, उसका शरीर झुक गया। इसको अगर आप पढ़ोगे आप भ्रमित हो जाओगे, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे युधिष्ठिर महाराज करने के लिए अनुमति दे रहे थे और उसको नीचे खींचकर लाते हैं। और तब द्रौपदी वहां सबके सामने प्रश्न करती है, वो प्रश्न कर रही है और इसके बीच हमारे दानशूर जी धर्मशाली कर्ण ने क्या कहा, अरे ये तो शास्त्र के अनुसार पांच पत्नियों को करना मना है, इसलिए वेश्या के समान है, वेश्या कपड़ा पहनती है नहीं पहनती है उसे क्या फर्क पड़ता है, कर दो इसको नंगा। उसके इच्छा के अनुसार दुशासन उसको नंगा करने में तुला हुआ था और फिर भी वो प्रश्न कर रही थी बताओ। और यहां व्यासदेव जी मध्वाचार्य कहते हैं कि यहां सबके यहां कली प्रवेश कर लिया था, कली ने प्रभावित कर लिया था। एक दृष्टिकोण हमने बताया पहले, हम इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जो वैदांतिक दृष्टिकोण बाद में देखेंगे। ये दृष्टिकोण क्या है कि जुआ क्या नहीं कर सकता, बड़े बड़े धर्मात्मा लोगों के मन में भी जब कली प्रवेश हो जाता है वो भूल जाते हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा था। भीष्मदेव को जब प्रश्न करती है, भीष्मदेव कहते हैं मैं आपकी प्रशंसा करता हूं द्रौपदी कि ऐसे भी हालत में आप धर्म का ही आश्रय ले रही हो, कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है, लेकिन मैं क्या करूं, इस प्रश्न का मैं कैसे उत्तर दे सकता हूं, धर्म बहुत क्लिष्ट है। धर्म क्यों क्लिष्ट है, क्योंकि जो हरा हुआ है वो स्वामी नहीं है, वो स्वामी न होने के कारण अपने प्रति जो निर्भर है उनको डाव पे नहीं लगा सकता। लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि स्त्री हमेशा पुरुष के अधीन होती है, इसलिए इस प्रश्न का मैं ठीक से वो क्या करते हैं स्पष्ट उत्तर नहीं देते, ऐसा कंफ्यूजिंग उत्तर, हां भी नहीं और नहीं भी नहीं। जैसे अमेरिका उत्तर देता है जब भारत और पाकिस्तान का जब टेररिज्म चलता है ना, ये भी नहीं वो भी नहीं, क्योंकि उनका फायदा होता है उसमें। और क्यों भीष्मदेव उत्तर नहीं दे पाए, प्रभुपाद जी इसके लिए कहानी सुनाते, प्रभुपाद जी ने कहानी सुनाया है कि महाजन है भीष्मदेव लेकिन प्रभाव हो गए, प्रभावित हो गए, इसलिए साफ साफ उत्तर नहीं दे सके। जहां दुस्संग हो जाता है वहां जो सज्जन के भी मति भ्रष्ट हो जाती है। गिरिराज महाराज से मैंने पहली बार सुना था, उन्होंने कहा था ये कहानी कि जब भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को सुनाने लगे अलग अलग धर्म, अपद धर्म, स्त्री धर्म, राज धर्म, ये धर्म वो धर्म, वो धर्म सुनाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तब द्रौपदी हंसने लगी तो भीष्मदेव कहा क्या हंस रही हो, मैं यही सोच रही हूं कि आप जब मैंने एक ही प्रश्न पूछा था उसका उत्तर आपके पास नहीं था, अभी तो ये हजार प्रश्न पूछने वाले हैं और आप कैसे उत्तर दोगे। तो भीष्मदेव हंसते क्या करो, मैंने जो अन्न खाया था भार का अन्न, होटल का खाना खाया था, उसका जो खून है उसके तेरे पति ने सब निकाल दिया है, अर्जुन वो सारा जो दूषित खून है उसको निकाल दिया है, वो निकलने के कारण अब मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है, अभी बुद्धि स्थिर होने के कारण मैं उत्तर दे सकता हूं, पहले मेरी बुद्धि ऐसी नहीं थी। और ये भीष्मदेव स्वयं महाभारत में कहते हैं, महाभारत के दृष्टिकोण से कह रहे उनको, वो महाजन है, भगवान के महान भक्त है, वो दृष्टिकोण हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो भीष्मदेव स्वयं युधिष्ठिर को कहते, युधिष्ठिर जब वो उनसे आशीर्वाद देने के लिए आते हैं युद्ध भूमि में कि मुझे आशीर्वाद दो, उन्होंने कहा हाँ अगर आप नहीं आते तो मैं आपको शाप देता, आप आ गए मेरे पास मैं आपको जरूर विजय के लिए आशीर्वाद दूंगा, लेकिन मैं क्या करूं, जो धर्म है वो किसी का दास नहीं है, हम सब अर्थ का दास है और अर्थ किसी का दास नहीं है, इसलिए अर्थ का दास होने के कारण जहां अर्थ है, जहां संपत्ति है, वहां से मैं युद्ध कर रहा हूं। तो सब गुलाम बन गए थे, उनके मुख से शब्द नहीं निकला, उत्तर नहीं दे पाए। और तब द्रौपदी भगवान को पुकारने लगती है, कृष्ण को पुकारती है, और कृष्ण उस गैम्बलिंग एरिया में नहीं थे, उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया बल्कि द्रौपदी की रक्षा कर दी, द्रौपदी की रक्षा हो गई। फिर भी प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। अर्जुन कह रहा है कोई तो दे दो उत्तर। और इस बीच में क्या हो गया, भीम बड़े क्रोधित हो गए। भीम ने कहा कि हे सहदेव जाओ, एक जलता हुआ लकड़ी लेकर आओ, जलता हुआ लकड़ी लेकर आओ, जिससे कि मैं इस लकड़ी से एक दोनों हाथ, मेरे भाई के दोनों हाथ, जिस हाथ से उन्होंने जुआ के लिए है उसको जला दूंगा। तो अर्जुन ने कहा ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको, ये अधर्म है। तो मध्वाचार्य के एक आचार्य कहते हैं, तो भीम ने कहा और एक लकड़ी लेकर इसका भी हाथ जला देता हूं। ये अधर्म को धर्म कह रहा है, मैं इसके भी हाथ को जला दूंगा। तो यहां दुर्योधन आदिगण प्रसन्न हो गए। हां यहां क्या हो रहा है, फूट पड़ रहा है, ये लोग में भेद आ रहा है। तो बहुत सुंदर से उन्होंने तात्पर्य लिखा है। तो भीम सोच रहे थे कि ये गलत है जो मेरे भाई ने किया हुआ है, ये अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो अपराधी है उसको दंड देना चाहिए। जैसे हमने उस दिन कह दिया कि जो भी अपराधी है उनके बारे में दंड देने की बात भीम बिना कोई रुकावट से बोल देते हैं। अगर वो कृष्ण हो, बलराम हो, कर्ण हो, अपने खुद के भाई हो और द्रोणाचार्य भी हो, अगर गलती दिखी उसको बोल दिए, ये उनका कर्तव्य था बोलना जिसने अपराध किया। तो युधिष्ठिर महाराज, तो अर्जुन को भीम कहते हैं मैं जानता हूं कि हमारे में फूट नहीं आनी चाहिए, लेकिन केवल मैं बोल रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग इट। बोल क्यों रहा हूं, क्योंकि जो महान लोग होते हैं, धर्मात्मा लोग होते हैं, उच्च कोटि के लोग होते हैं, उनको दंड कैसे देना चाहिए, वाग दंड, केवल शब्दों के द्वारा। तो धर्मात्मा है मेरे भाई, बड़े भाई, उनको मैं कैसे हाथ जलाऊंगा, लेकिन मेरे मुख से, शब्दों से उनको मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं करूंगा नहीं। अगर युधिष्ठिर महाराज नहीं होते मध्य, अगर उनसे नीच होते तो निश्चित रूप से उनको मैं दंड देता, और उससे भी नीच होते तो असली में उनका मैं हाथ जला देता, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं। तो प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, तब धृतराष्ट्र रोक गए, उनको लगा कि अभी कुछ हो जाएगा। धृतराष्ट्र कैरेक्टर ऐसा है, विचित्र कैरेक्टर, उन्होंने कहा भंग कर दो इसको, सारे जो संपत्ति है, सारा संपत्ति है पांडवों का, वापस दे दो, उनको भेज दो, द्रौपदी मांग लो जो भी वरदान चाहिए। एक्चुअली द्रौपदी को कहते मांगो जो भी वरदान चाहिए, और द्रौपदी मांगती है कि मेरे सारे जो संपत्ति थी जो युधिष्ठिर महाराज खो गए उसको वापस दे दो, हमको दासत्व से मुक्त कर दो ही वरदान मांगती है। तो धृतराष्ट्र देते, और से प्रश्न उठता है कि महान भक्त थी, शरणागत थी, उन्होंने भगवान का आश्रय लिया हुआ था, जब कृष्ण भक्त होते देवताओं से मांगते नहीं, फिर धृतराष्ट्र से क्यों मांगेंगे? धृतराष्ट्र कोई देवता है नहीं है, देवताओं से नहीं मांगते भगवान के भक्त, फिर द्रौपदी क्यों उनसे मांग रही थी, वो मांग नहीं रही थी, भीख नहीं मांग रही थी, ये लोग ने क्या किया था, जबरदस्त से लिया था, अपने ही प्रॉपर्टी को वापिस ले रही थी, वरदान कुछ नहीं मांगा है, इसलिए द्रौपदी को कोई लोप नहीं लगा। तो पांडव वहां से निकल जाते हैं, निकलने के बाद फिर से दुर्योधन चला जाता है अपने पिता के पास। इसका देखो क्या मन है दुर्योधन, धृतराष्ट्र का मन हमारे साधना भक्ति के समय जैसा मन होता ना वैसा है, इधर से उधर, पाप से लेकर सीधा गोलोक, हम लोग गोलोक जाने की इच्छा करते हैं कभी, और दूसरे बाद मन जब यहां आ जाता है फिर गोलोक से फिर वो कहां लोग चला जाता है कोई जानकारी नहीं। तो धृतराष्ट्र वाज लाइक दैट, पूरा भी आशीर्वाद दे दिया, चले जाओ शांति से रहो, प्रेम से रहो, युधिष्ठिर महाराज देखभाल करना लोगों की, प्रजा का ठीक से देखभाल करो, ऐसा बोल दिया और जा रहे हो इंद्रप्रस्थ। फिर से दुर्योधन आ गया, वही उन्होंने मंत्र चालू किया, उसका हरे कृष्ण मंत्र कौन सा था, आत्महत्या करूंगा मैं, मर जाऊंगा, इसके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। तो दुर्योधन अर्जुन के महानता को बताने लगता है, अर्जुन कितना महान है, उसके सामने हम कैसे जीवित रह सकते हैं, कोई संभव है, हम मर जाएंगे, इसको वापस बुला लो। फिर गांधारी आती है वहां, गांधारी आकर बोलती है अपने पति को, जानते हो ना बचपन में इसका जब जन्म हुआ था विदुर ने क्या कहा था, इसको छोड़ दो, मैं अभी कह रहे इसको त्याग कर दो, गांधारी पहली बार कहते कि इसको त्याग कर दो। धृतराष्ट्र अंधा था, अभी कान भी बंद कर दिया, बोलता मैं नहीं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसको त्याग नहीं कर सकता। फिर धृतराष्ट्र भेजते विदुर को, बुला कर लाओ उनको। उनको बुला कर लाते हैं और इस समय सारे पांडव भीष्म द्रोण सब लोग युधिष्ठिर महाराज को कह रहे थे मत जाओ, जाना नहीं चाहिए आपको, बहुत बड़ा धोखा आ जाएगा। सब कहने पर भी युधिष्ठिर महाराज ने क्या कह दिया, अगर मुझे कोई बुलाएगा मैं उसको मना नहीं कर सकता। अगर सोचो हमने ऐसा व्रत लिया है, हमारे वरिष्ठ जो भी बोलेंगे हम करेंगे, और आजकल के वरिष्ठ क्या बोलते हैं, चलो मध्य ग्रह में शराब पीने के लिए, क्या जाना चाहिए? वरिष्ठ बोल रहे तो मुझे करना ही पड़ेगा। अगर कोई आपके वरिष्ठ मित्र है, वो कहेंगे चलो क्रिकेट देखने के लिए, ब्रह्मचारी को कह दिया, वो कहेगा रघुपति और राधेश्याम प्रभु को, प्रभु जी देखो मेरे वरिष्ठ बोल रहे मुझे जाना ही पड़ेगा, इसके लिए दूसरा पर्याय नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज की बात ऐसी लगती है कि वो कह रहे कि नहीं, उन्होंने कह दिया मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं विधि को महान समझता हूं, शक्तिशाली समझता हूं विधि को, इस विधि को मैं ठुकरा नहीं सकता, आई हैव टू गो। सब लोग रोक रहे थे लेकिन फिर भी आए, और यहां शकुन ने बोला एक ही पास, अभी ज्यादा कष्ट नहीं है, एक ही हम फेंकेंगे। इसमें ऐसा है कि अगर आप जीत जाओगे तब क्या होगा, हम लोग 12 साल के लिए वनवास के लिए जाएंगे और एक साल के लिए अज्ञातवास। अगर आप हर जाओगे तो आपको 12 साल के लिए वनवास और एक साल के लिए अज्ञातवास। तो युधिष्ठिर महाराज ने हां कह दिया, जहां की सब लोग कह रहे थे कि मत करो इसको, ये सबका नाश करेगा, परंतु किसी ने उनको आवेश कर लिया था, तो उस आवेश के कारण उन्होंने तैयारी दर्शाई और पासा गिर गया। फिर से युधिष्ठिर महाराज मांगे क्या, 4 या 3, क्योंकि कली और वो द्वापर का प्रभाव था, वो संख्या वैसे ही गिर गई जो पांडवों के विरुद्ध में थी, और उनका जो वनवास है वो निश्चित हो गया। जैसे ही वो हार गए उनको कह दिया कि सारे कपड़ों को उतार कर वल्कल वस्त्र धारण करो, जैसे भगवान रामचंद्र जी के साथ हुआ था वैसा ही होगा। विदुर जी कहते जैसे भगवान रामचंद्र जंगल की ओर जा रहे थे, सारी प्रजा तेरे पुत्र को धिक्कार कर रही थी, जैसे कई कई को लोग कर रहे थे, शाप दे रहे थे, वैसे ही शाप दे रहे थे। कई कई बच गई अंतिम क्षण में, क्योंकि उसने राम का आश्रय ले लिया, लेकिन दुर्योधन ने आश्रय नहीं लिया। और जाते समय दौ में क्या कर रहे थे, नैऋत्य दिशा को देखकर, जो दक्षिण की ओर है, नैऋत्य दिशा को देखकर यम को आह्वान करने वाले मंत्रों को गा रहे थे। इसका अर्थ क्या हो गया, यम को आह्वान करने वाले मंत्र, यानी कि बहुत निकट ही नरसंहार होगा। और युधिष्ठिर महाराज अपने आंखों को बंद करके जा रहे थे, क्यों, क्योंकि अगर अपने आंखें खोल देंगे कि सबके सब मारे जाएंगे। और भीम अपने भुजाओं को देख रहे थे, इंद्र भी यहां आ जाएगा, अभी वो फंस जाएगा तो छूट नहीं पाएगा, मेरे भुजाएं इतने शक्तिशाली, निश्चित रूप से इसका मैं दर्शन कराऊंगा। और अर्जुन जो रेती है उसको लेकर बिखार रहे थे, ऐसे मेरे धनुष से बाण निकलेंगे। और सहदेव अपना चेहरा बंद करके जा रहे थे, कोई मेरे चेहरे को देखना चाहिए। और नकुल अपने पूरे शरीर को मट्टी लगा करता कि यहां के जो स्त्रियां है मेरे प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए, इतने सुंदर थे वो, इसलिए वैसे जा रहे थे। युधिष्ठिर महाराज ये विदुर धृतराष्ट्र को बतलाते हैं, नहीं संजय धृतराष्ट्र को बतलाते हैं कि देखो इस प्रकार से जा रहे थे, भूकंप सा हो गया, सारे अपशकुन होने लगे। तो यहां हम देखते हैं अलग अलग चित्र है कि कैसे जुआ किस प्रकार से व्यक्ति को भ्रष्ट कर सकता है। जो भी जुआ खेलेगा, कितना भी महान धर्मात्मा क्यों न हो, हाथ में फांसा लेते ही क्या होगा, उसको फांसी पड़ जाएगी, ही विल बिकम टोटली डिस्ट्रॉयड। परंतु वेदांत का दृष्टिकोण है, ऐसे धर्मात्मा युधिष्ठिर क्यों करेंगे, वो इसलिए करेंगे क्योंकि वो काल है, वो काल होने के नाते काल का प्रतिनिधित्व करता है, यमराज का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए बार बार कहते कि विधाता की इच्छा है, विधाता की इच्छा है, विधाता की इच्छा है। विधाता की इच्छा क्या थी कि नरसंहार होगा, और नरसंहार होने के लिए युधिष्ठिर महाराज को उसका एक इंस्ट्रूमेंट बनना ही होगा, उसका एक प्रतिनिधित्व करना ही होगा। प्रतिनिधित्व करने के लिए वो हमें इस प्रकार के कार्यों को कर रहे थे। यमराज होने के नाते डिस्ट्रक्शन के लिए क्या चाहिए, इसलिए युद्ध भूमि में लोग क्या करते, हर हर महादेव कहते, हरि हरि नहीं कहते। विष्णु के भक्त भी जैसे महाभारत में हम देखते हैं, जयद्रथ के वध के पहले जब युद्ध के समय अर्जुन हर रोज शिवजी की पूजा करते थे, आप इसको पढ़ सकते हो, लोग भ्रमित हो जाते कि अरे अर्जुन क्यों शिवजी की पूजा कर रहे हैं। शिवजी क्या प्रतिनिधित्व करते, वो काल को प्रतिनिधित्व करते, संहार शक्ति को प्रतिनिधित्व करते। सातवें स्कंद के भागवत में स्वयं शिवजी जब हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई तब वो प्रार्थनाओं को अर्पण करते हैं कि आपका जो कोप है, आपका जो क्रोध है, वो मेरा प्रतिनिधित्व है, मैं काल हूं। संहार के समय आप इस रूप को धारण करते हो और आपने इस रूप को धारण किया हुआ है, तो हर हर महादेव यानी कि संहार करने के लिए मुझे शक्ति दे दो। इसलिए अर्जुन भी ये कृष्ण की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए कृष्ण की पूजा किसके लिए करनी है, हर चीज के लिए भगवान के पास भक्त लोग उनको कष्ट देने के लिए नहीं जाते, उनके इतने सारे सेवक है ना, जैसे इतने सारे सेवक है उनसे सेवा ले लो। इसका अर्थ नहीं कि कल हम लोग दुर्गा मंदिर जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, उनको गौरव तो हमको करना ही है। वैष्णव को सब देवताओं को कैसे देखना है, विष्णु के निकट के पार्षद विश्वासु सेवक, तो निश्चित रूप से उनको एक प्रणाम करने से कोई व्यभिचार नहीं होता, उनसे प्रार्थना करने से कोई व्यभिचार नहीं होता, बल्कि उनका अपराध करने, अरे देवतागण कौन है, मैं तो इनकी पूजा नहीं करूंगा, ये मेरे लिए कोई नहीं है, नहीं फिर ये गलती हो जाती है। तो इसलिए युधिष्ठिर अर्जुन आप देख सकते हो महाभारत में हर रोज ऐसी कहानी आती है। जयद्रथ को मारने के पहले जब अभिमन्यु का वध हो गया, जब अर्जुन आ रहे थे, वहां चित्र ऐसा है कि हर रोज अर्जुन जाकर अपनी संध्या करते थे और वहां कुछ अपने कैंप में जाकर फूल लेकर वो शिवजी के लिंग है उसको अर्पण करते थे। तो उस दिन क्योंकि जल्दी जाना था, भगवान कृष्ण ये समाचार उसको सुनाना ही चाहते थे, वो जाकर देखे तो उन्होंने कहा मुझे रुकना है, बोला अभी चलो जल्दी निकलते, मुझे पूजा करनी है शिवजी की, बोला करो ठीक है। भगवान ने क्या किया, अपने पैर को आगे किया और वहां उनका जो पैर के पास को क्या कहते इधर का भाग, एडी, हाँ वहां कृष्ण ने कहा वहां फूल चढ़ाओ, ये आता है महाभारत में। तो वहां फूल चढ़ाया और जब अर्जुन अपने कैंप में जाकर देखते हैं वो फूल कहां था, शिवजी के लिंग के ऊपर था। तो अर्जुन जान गए सारे देवतागण यहां ही है, लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, शिवजी की पूजा करते थे, किसके लिए, ताकि संहार शक्ति में उनको मदद करे। इसलिए क्षत्रिय लोग ऐसे नहीं कि सारे क्षत्रिय लोग, वैष्णव भी हो वैसा करते, क्योंकि उनका क्षत्रिय धर्म है, उनको ऐसा इस वैदिक ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है, वो करते थे। तो यहां संहार शक्ति है युधिष्ठिर महाराज, इसलिए व्यास ने क्या कहा था, व्यास ने कहा था कि आप यमराज अंश होने के कारण आपको प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन यहां युधिष्ठिर महाराज एक सभ्य और सज्जन अहिंसावादी होने के नाते उन्होंने व्रत धारण कर लिया, और इस व्रत के कारण जुआ खेलना जैसे शकुनि ने कहा उनको बहुत प्रियता, प्रियता ने कि क्या, जहां व्रत नहीं लेना, एक अलग दृष्टिकोण आ गया फिर से भी, यमराज का दृष्टिकोण है ये वेदांत का है, और व्रत लेना ये मनुष्य स्वभाव है, और जहां व्रत मनुष्य लेता हो लेकिन उसके दुष्परिणाम हो जाते हैं उस व्रत का कोई लाभ नहीं है, तो उनको ऐसा व्रत नहीं लेना चाहता, वही जुआ था। और आगे जाकर यहां शकुनी कहते कि युधिष्ठिर महाराज लाइक्स टू प्ले गैम्बलिंग, और सबसे बड़ा भयंकर जुआ कब खेला उन्होंने, जब दुर्योधन के साथ, दुर्योधन जब पानी में छिप कर बैठे हुए थे और कई लोगों ने उनको समाचार दिया कि दुर्योधन जल स्तंभ को जानता है, वहां जाकर उसको बाहर लेकर आओ, और पांडव जाकर उसकी भर्त्सना करते हैं, उसको ताड़ते हैं और उसको ऊपर बुलाते, बोला मैं थका हूं, मैं आ रहा हूं, अभी आ जाओ, तो आ जाता है ऊपर। और युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं कि देखो कि हमारे से मैं किसी को भी चुन लो, अगर तू जीत जाएगा ना फिर हस्तिनापुर का तू राजा बन जा। तो कृष्ण एक्चुअली में कहते इसको आपको किसने बोला है बोलने के लिए, हम इतना कष्ट करके आपको राजा बनाना चाहते हैं और तुम ऐसे कुछ बोलकर पूरा नाश कर रहे हो। यू सी दिस इज वेरी रियलिटी, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। अगर युधिष्ठिर महाराज अकेले संघर्ष करना होता पहले तो संघर्ष करते ही नहीं थे, बोलते मैं चला जाऊंगा जप करने के लिए, तो मेरा जप महत्वपूर्ण है, कोई राज्य करने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, धर्म की स्थापना करनी थी, भगवान को धर्म स्थापना करना था, इसलिए ऐसे राक्षसों को मारना था, इसलिए युधिष्ठिर महाराज को राज्य में राजा बनाना था, और उनको मदद करने के लिए अर्जुन भीम थे और तंत्र करने के लिए कृष्ण थे। तो इसीलिए जब कृष्ण का ऐसे कैसे कर दिया आपने, सोच लो अगर उसने नकुल को बोल दिया नकुल आ जाओ मैं युद्ध करूंगा, बोल भी सकता है दुर्योधन ऐसा है ही, और नकुल एक सेकंड के अंदर और जो भी कैसा है नकुल को चुन सकते हो और जिस अस्त्र में आपको युद्ध करना है उस अस्त्र से युद्ध कर सकते हो। अगर वो कहता था नकुल मेरे साथ युद्ध करेगा गदा युद्ध, तो क्या हो गया, दुर्योधन इतना निष्णात था गदा युद्ध में, अर्जुन ने प्रश्न भगवान से करते जब भीम और दुर्योधन का चालू हो गया, अलग कौन इसमें शक्तिशाली है, तो कृष्ण ने कहा देखो अर्जुन शक्ति में भीम महान है लेकिन जो स्किल में दुर्योधन महान है, इसलिए कठिन है कहना ये दुर्योधन को धर्म के द्वारा फेयर फाइट में नहीं मारा जा सकता, इसको तंत्र के साथ ही मारना होगा, ये ऐसे ही हारेगा नहीं। यानी कि भीम जिनकी शिक्षा उसी गुरु के पास हुई थी बलराम जी के पास, परंतु सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ, दुर्योधन का द्वेष किसके ऊपर था, खास करके भीम के ऊपर था, वे बात उसको समझ में नहीं आई, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया भीम को चुन लिया। तो यहां भी जुआ खेलते, ये जुआ हो गया, किसी भी जाकर किसी के सामने बोलना कि ऐसा करो तो हम तैयार हो जाएंगे, व्रत लेना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ा जुआ है। और युधिष्ठिर महाराज ऐसे बार बार किया करते थे, वो व्रत को लेते थे, तो यही सबसे बड़ा जुआ है। और इस व्रत को क्योंकि उन्होंने वचन लिया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा और किसी के सामने जो मेरे वरिष्ठ है अगर वो कहेंगे कि आपको ये करना होगा मैं निश्चित रूप से करूंगा, यही कारण था युधिष्ठिर महाराज आगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवत में कि क्षत्रिय कैनॉट से नो टू वॉर एंड गैम्बलिंग, जुआ के लिए क्षत्रिय और युद्ध करने के लिए वो नहीं कह सकता, एक क्षत्रिय रूल हो गया। लेकिन उससे बढ़कर रूल क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, उसको मना कर सकते थे। और इसके विपरीत कृष्ण जो स्वयं भगवान है, यहां हम रोकते युधिष्ठिर महाराज के बारे में, आपको दो दृष्टिकोण से देखना है, जब हमें सीखना है तब युधिष्ठिर महाराज के व्रतों को देखो गलतियों को देखो, लेकिन वेदांत दृष्टिकोण से युधिष्ठिर महाराज को देखना है तब क्या देखना है कि वो यम अंश है, काल के अंश है, इसलिए वो एक महाभागवत के रूप में कभी गलती नहीं करेंगे, यम के रूप के गलती नहीं करेंगे। उनका जुआ खेलना ऐसा नहीं कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, ये कहानी इसके लिए, हम जुआ खेलेंगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, कृष्ण दिखाना चाहते देख ये धर्मराज को ऐसा हो सकता है तो तुम तो अधर्म ही है, अभी भक्त बनना चाह रहा है तो कैसे जागृत रहना चाहिए, इसके बीच में कभी फंसना नहीं, और कैसे व्रत को धारण करना चाहिए। तो कृष्ण कैसे व्रत को धारण करते हैं, इसके विपरीत कैसे कार्य करते हैं, कैसे अपने व्रत को तोड़ते हैं, नियम तोड़ते हैं, अपना वचन तोड़ते हैं, वचन बनाते हैं, वचन बनाने में वचन तोड़ने में कृष्ण क्या करते हैं। वो जो समाज के लिए योग्य है, धर्म स्थापना करने के लिए योग्य है, उसको ही ठीक से करते। बहुत सुंदर प्रकार से विश्लेषण किया गया है महाभारत में कि वचन लेना और तोड़ना। जैसे हम पहले दिन चर्चा कर रहे थे, हम कभी कभी बोलते हैं अरे कृष्ण तो कुछ भी कर सकते हैं, वो ऐसा कुछ भी करते नहीं है। ही इज नॉट अ क्रेजी डिक्टेटर, वो कोई पागल डिक्टेटर नहीं है कि अभी एक नियम बनाया फिर वही नियम को तोड़ दिया। भगवान होने पर भी वो धर्म के आधीन ही चलते हैं। और यहां महाभारत में कृष्ण ने जब मनुष्य लीला का जो कार्य कर रहे थे, उन्होंने एक भी नियम नहीं तोड़ा। जब दिव्यत्व का प्रदर्शन कर रहे थे, वो मनुष्य में नहीं आता। जब विश्वरूप का दर्शन किया, दैट इज बियॉन्ड ह्यूमन बींग, गोवर्धन धारण किया, वो बियॉन्ड ह्यूमन बींग, 16,000 स्त्री के साथ विवाह किया, ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता। कालिया के साथ युद्ध किया, ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता। लेकिन जो मनुष्य के आदिन जो कार्य है, उन कार्यों को कृष्ण ने कैसा किया, उन्होंने एक भी नए नियम तोड़ा। तो यहां हम देखेंगे कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के विपरीत कैसे नियमों को पालन करते करते, नियमों को तोड़ते तोड़ते, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, धर्म के साथ ही है, उन्होंने पांडवों के लिए और सारे समाज के लिए कैसे धर्म की स्थापना की, वो हम शाम के समय केवल इसी लीला के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।